अष्टम दिवस
मनाद्यानंदकूटस्थ ज्ञानानंत सदात्मने अभूतद्वैतजालाय साक्षिणे ब्रह्मणे नमः। विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामी संबंधतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्राद्यात्मनाभीततः स्वप्ने जाग्रति वा येष पुरुषो माया परिभ्रामितः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये यस्याहुरागमविदः परिपूर्णशक्ते रंशे कियत्यपि निविष्टममुं प्रपञ्चम् तस्मै तमालरुचिभासुरकन्धराय नारायणी सहचराय नमः शिवाय। यद्वक्त्रमानससरः प्रतिलब्धजन्म भाष्यारविन्दमकरन्दरसंविवन्ति प्रत्याशमुन्मुखविनीतविनेयभङ्गास्तान् भाष्यवित्तकगुरून् प्रणमामि मूर्ध्ना। मम न भजनशक्तिः पादयोस्तेन रक्तिः न च विषयविरक्तिर्ध्यानयोगेन शक्तिः। इति मनसि सदाहं चिन्तयन्नात्यशक्ते रुचिरवचनपुष्पैरर्चनं सञ्चिनोमि ॐ भद्रं कर्णे विष्णुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाघो स्वस्तनूभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो यरिष्टनेमिः स्तिनो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। चरम लक्ष्य का विचार करते हुए भगवान ने उस ज्ञेय तत्व को बताना प्रारंभ किया जिसको जानने के बाद, जिसका प्रत्यक्ष अनुभव कर लेने के बाद और कुछ भी पाना जानना बाकी नहीं रह जाता। उसके स्वरूप को बतलाते हुए कल बताया था किस प्रकार से इस संसार के स्वरूप को जो दो विचारधाराएं प्रधान रूप से चलती हैं वह दोनों ही किस प्रकार से एकांगी है। संसार में केवल सुख ही सुख है इसलिए भोग ही प्रधान है, यह एक दृष्टि। वर्तमान काल में यही प्रधान दृष्टि है। संसार में दुख ही दुख है इसलिए इसका स्वरूप से त्याग किया जाए, ये दूसरी दृष्टि। तीसरी जो दिव्य दृष्टि वेदों ने दी है वह संसार की वास्तविकता को समझने की दृष्टि। सचमुच में संसार का क्या रूप है ये समझ लेने पर उसमें सुखात्मकता और दुखात्मकता नहीं रह जाती है, केवल एक आनंद घनता रह जाती है। क्योंकि तब यह बात समझ में आती है, क्षेत्र के द्वारा जो प्रकट हो रहा है वो मृग तृष्णिका की तरह होने के कारण न हमको सच्चा सुख दे सकता है न हमको सच्चा दुख दे सकता है। यह तो केवल हमारे अनंत भाव को प्रकट करने का साधन मात्र है, एक माध्यम है, एक मीडियम है जिसके द्वारा यह अनंतता प्रकट हो रही है। यह जो दिव्य दृष्टि है यह वेद हमको देते हैं, इसलिए भगवान और आगे बतलाते हैं, बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयम् दूरस्थम चांतिके च तत्। जैसे छोटे बच्चे को समझाया जाता है वैसे ही भगवान अत्यंत करुणा और प्रेम से भर करके एक एक कदम समझाते हैं। बही ही उस परमेश्वर को कहां कहां समझना है तो बाहर। बाहर का क्या मतलब? आचार्य शंकर लिखते हैं, त्वक पर्यंतम देहम आत्मत्वेद अविद्याकल्पितम अपेक्षा बहिः। मनुष्य प्रायः करके अपने शरीर का जो चमड़ा है त्वक है बाहर का, वहां तक अज्ञान के कारण समझता है ये मैं हूं। इस त्वक के बाहर की चीज को वो मैं से भिन्न समझता है और इस चमड़े तक अपने को मैं समझता है। यद्यपि यह बात आज विज्ञान से भी सिद्ध हो चुकी है, हमारे शरीर की परिधि इस चमड़े में समाप्त नहीं होती, इसके बाहर तक फैली हुई होती है। ऐसे समझो, मान लो हमारी आंखों के अंदर इस प्रकार का कांच न हो करके जिससे तुम एक्सरे लेते हो उस प्रकार का तुम्हारी आंख में स्थिति होती, तो तुमको सारे शरीर कहां तक दिखाई देते? हड्डी तक दिखाई देते। जिस प्रकार तुम साधारण कैमरे से भाचित्रक से जब चित्र लेते हो, फोटो लेते हो, तो वो फोटो त्वक पर्यंत का आता है, तुम्हारे चमड़े तक का आता है, क्योंकि उस भाचित्रक के अंदर, उस कैमरा के अंदर वह सामर्थ्य है। परंतु एक्सरे के कैमरे से जब फोटो लेते हो तो उसमें न तुम्हारा त्वक आता है न मांस आता है, उसमें तुम्हारी हड्डियां आती हैं। अर्थात यदि उस ढंग का तुम्हारा चाक्षुष प्रत्यक्ष होता तो तुमको सब लोगों की केवल हड्डियों के ढांचे की प्रतीति होती और तुम यह मानते कि बस हम लोगों का शरीर हड्डी तक है, क्योंकि वहीं तक दिखता। उसके बाद यदि कोई व्यक्ति नए ढंग का कैमरा बनाता, भाचित्रक बनाता और तुम्हारे त्वक पर्यंत का चित्र आता तो तुमको लगता ये कुछ भिन्न है तो अपने हड्डी तक ही। ठीक इसी प्रकार से एक नए ढंग का भाचित्रक कैमरा बनाया गया है, एक बड़ा वैज्ञानिक हुआ किलॉक, उसने बनाया है किलॉक्स कैमरा। वो हमारे शरीर के बाहर 3.5-4 इंच तक का चित्र ले लेता है। हमारे शरीर से जो किरण पुंज निकलते हैं वह सब उस चित्र में आ जाते हैं, चमड़े वाला हिस्सा नहीं आता, क्योंकि उस भाचित्रक की दृष्टि से बाहर वाला हिस्सा वो है। मनुष्य की अनेक बीमारियों का निदान करने के लिए उसका प्रयोग अब होने लगा है, ठीक जिस प्रकार एक्सरे का प्रयोग होता है। अंदर की चीज जानने के लिए वैसे ही इसका प्रयोग होता है बाहर की चीज जानने के लिए। शरीर में बीमारी प्रकट होने के पहले बाहर के हिस्से में बीमारी प्रकट हो जाती है, अतः अनेक रोगों का शरीर में किस जगह रोग है उसका उससे निदान संभव हो जाता है। शुरू शुरू में जब वह भाचित्रक बनाया गया उसका परीक्षण करने के लिए वैज्ञानिकों का एक समुदाय गया, तो वो दो पत्तों को लेकर के गए, एक ही वृक्ष के बिल्कुल एक जैसा पत्ता। जाकर के उन लोगों से कहा इन दोनों का चित्र लेकर के हमको दियो। अब वो पहली बार परीक्षण करना था, उन लोगों ने चित्र लिया तो एक का चित्र तो आया बाहर में पूरे तेज के साथ और दूसरा चित्र आया उसमें तेज बिल्कुल क्षीण नहीं जैसा। अब वो एक ही पेड़ के दो पत्ते, तो वो घबरा गए। उन्होंने विचार किया कुछ कैमरे में गड़बड़ी है, भाचित्रक में गड़बड़ी है, तो 3-4-5 बार बार चित्र लेते रहे, जो वैज्ञानिक परीक्षण करने आए थे उन्होंने कहा, अरे बड़ी देरी कर रहे हो, चित्र उतारने में इतनी देरी। घबरा के उन्होंने सच्ची बात कही, पता नहीं हमारे भाचित्रक में कोई गड़बड़ी हो गई है, दोनों के चित्र एक जैसे नहीं आ रहे। उन्होंने कहा लाओ चित्र दिखाओ, तो दिखाया। तब जो वैज्ञानिक गए हुए थे उन्होंने कहा, तुम्हारा ये नतीजा ठीक है, हम लोगों ने एक ही पेड़ से एक साथ इन दोनों पत्तों को तोड़ा जरूर, परंतु तोड़ने के बाद एक के अंदर जहर को डाल दिया जिससे ये पत्ता मर गया है। तो जीवन और मरण हम लोगों को पत्ते देखने में कुछ फर्क नहीं, परंतु बाहर का जो उसका चित्र है उसमें फर्क आ जाता है। फिर धीरे धीरे मनुष्य शरीर पर प्रयोग किए गए, जो भी हो, यहां तो ये बतला रहे हैं शरीर की परिधि कहाँ है इसका निर्णय यदि करना चाहें तो हमारे लिए संभव नहीं। बस इतना ही कह सकते हैं कि त्वक पर्यंतम देहम आत्मत्वेन अविद्याकल्पितम अपेक्ष, हमारी जो अविद्या हमारा जो अज्ञान वो हमको त्वक पर्यंत ही देह के अंदर आत्मभाव को लाता है। है कहां तक देह ये कुछ नहीं कहा जा सकता। क्योंकि जैसे ही बाहर शब्द का प्रयोग किया जाता है समस्या उठ जाती है, कहां से बाहर, जितने को हमने अपने मैं रूप से मान रखा है, जहां तक हमको मैं की प्रतीति है उस शरीर के उतने हिस्से से बाहर। तो इस शरीर से बाहर भी जो कुछ है वह सब गेय है। भूतानां बहिः, वो भी सारा गेय है। और अंतश्च भूतानां, और इस शरीर के अंदर जो है वह सब भी वही परमात्म तत्व है, वही गेय है। शरीर के बाहर वही है, शरीर के अंदर वही है। तो शंका होती है शरीर के बाहर और शरीर के अंदर तो वो हुआ, परंतु ये जो शरीर दिख रहा है ये तो कुछ और होगा। ठीक जिस प्रकार से नदी के अंदर तुमने कमंडलू को डाल दिया तो कमंडलू के अंदर नदी का जल भर गया, कमंडलू के बाहर तो नदी का जल है ही, तो कमंडलू के अंदर जल है, कमंडलू के बाहर जल है, परंतु बीच में कमंडलू तो है। शायद वो परमात्मा नहीं होगा, वो गेय नहीं होगा। तो भगवान ने कहा बहिरंतश्च भूतानां अचरम चरमेव च, दो ही प्रकार के शरीर संसार में मिलते हैं, एक चलने वाले जैसे हमारे हैं गाय भैंस के हैं, दूसरे नहीं चलने वाले जैसे पेड़ पौधे हैं। जितने भी शरीर हैं चर और अचर वह सब भी वही है। केवल कमंडलू के बाहर और कमंडलू के अंदर नहीं, कमंडलू भी वही है। तो स्वाभाविक मन में प्रश्न उठता है, शरीर से बाहर वो, शरीर से अंदर वो, शरीर भी वो, व्यवहार विषयम सर्वम, यही तो सब व्यवहार का विषय है। तो फिर इस सारे व्यवहार के विषयों को देखते हुए हमको वह परमात्म स्वरूप क्यों नहीं दिख रहा? तो कहा सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयम्, सर्वत्र होने पर भी सूक्ष्म होने से तद अविज्ञेयम्, सर्वत्र होने पर भी सूक्ष्म होने से वो समझ में नहीं आया। वो कैसा सूक्ष्म है? दूरस्थम अंतिके चतत, दूर से दूर भी है और पास से पास भी है, ऐसा वो विचित्र तत्व है। इसलिए उसको जानने के लिए हमको विशेष विचार की दृष्टि लानी पड़ती है। सूक्ष्म चीज को समझने के लिए अंतकरण में ठीक प्रकार के संस्कार लाने पड़ते हैं। हम लोग जो शब्द बोलते हैं वो शब्द भी किसी स्वर में ही होते हैं, बिना स्वर के तो शब्द का उच्चारण हो नहीं सकता। परंतु इतने पर भी हम लोगों को कुछ पता नहीं चलता हम किस स्वर में बोल रहे हैं या सामने वाला किस स्वर में बोल रहा है। जो संगीत शास्त्र को सीखता है वो उस स्वर को पहचान सकता है। स्वर को सुनने के लिए कोई नया कान नहीं लगाना पड़ता। ये जो हमारा कान है यही स्वर को सुनेगा, परंतु तब सुनेगा जब स्वर के विषय में ज्ञान प्राप्त करके हमारा अंतकरण उस संस्कार से संस्कृत हो जाएगा, अन्यथा हमको सुनने पर भी नहीं सुनने वाली बात है। इसी प्रकार से जितनी सूक्ष्म चीजें हैं, आजकल कई बार हमारी आदत है पूछ लेते हैं वहां गए थे क्या भोजन बना था, कहते हैं साग बना था या दाल बनी थी। आगे जब हम पूछते हैं कौन सी दाल बनी थी, अरहर की दाल बनी थी, उड़द की दाल बनी थी, मूंग की दाल बनी थी, किस चीज की दाल बनी थी, तो आप लोगों को आश्चर्य होगा बहुत से लड़के 25 साल के, लड़कियां कहती हैं दाल बनी तो थी, किस चीज की बनी थी ये हमने ध्यान नहीं दिया। गजब हो गया, कटोरी भर दाल खा गए तुमको यही नहीं पता लगा हम किस चीज की दाल खा रहे। इसी प्रकार जब हम पूछते हैं किसका साग बना था, एक तो उसमें आलू था और बाकी शायद बैंगन या तोरी कुछ पड़ी हुई थी, बैंगन और तोरी का उनको फर्क नहीं पता लगा।
खा गए। कारण क्या है?
जो इसको समझता है उसको कोई नई जीव नहीं मिलती है, यही जीव है, परंतु उसको संस्कार से संस्कृत है इसलिए उसको पता है बैंगन का स्वाद ये है, तोरी का स्वाद ये है। आलू भी उनको पता लग जाता है क्योंकि बड़ा टुकड़ा होता है तो दिख जाता है। अन्यथा यदि आलू का भी चॉप बना दिया जाए पीस करके तो कई बार उनको पता नहीं लगता कि ये आलू का है या अरवी का है। ये परीक्षा जैसे सीखनी पड़ती है। उसी जीव से सब खाते हैं, उसी जीव से सारे स्वाद लिए जाते हैं, उसी कान से सुना जाता है। कोई नया कान नहीं मिल जाना है, कोई नई चीज तुमको सुनने को नहीं मिलेगी, जो अभी सुन रहे हो वही सुनोगे, परंतु सुनते हुए तुम पहचान सकोगे। इसी प्रकार से उस परब्रह्म परमात्मा का ज्ञान किसी नई आंख से नई इंद्रियों से नहीं हो जाना है, इन्हीं से होते हुए तुम उसको पहचान सकोगे। इसलिए भगवान ने कह दिया जब तक उसकी पहचान नहीं तब तक दूरस्थम। जब तक पहचान नहीं तब तक समझते हो बहुत दूर है, और पहचान होते ही पता लगेगा अंतिकेच तत, अत्यंत पास में है। सतयुग के अंतिम भाग में एक सत्यव्रत नाम का गांव था, वहां एक बृहत्तपा नाम के ब्रह्मनिष्ठ महात्मा आए। वहां पर एक दीर्घतमा नाम का जन्म से अंधा ब्राह्मण था, जन्मांध था, जन्म से ही अंधा था। उस ब्राह्मण ने प्रार्थना की मेरे कल्याण का मार्ग बतावे। बृहत्तपा महर्षि उनको परमात्मा के विषय में सुनाने लगे। 100 वर्ष तक वह उसको परमात्मा के विषय में सुनाते ही रहे। सत्यव्रत गांव गंगा जी से कुल 2 कोस दूर था। आजकल की भाषा में 7 किलोमीटर समझ लो, पास ही था। अब उस कथा का इंतजाम करने के लिए वहां एक पुण्यधामा नाम के ब्राह्मण थे, क्योंकि दीर्घतमा तो जन्मांध थे, तो सारी व्यवस्था पुण्यधामा वहां की करते थे, कथा भी सुनते थे और सारी व्यवस्था भी करते थे। वो भी 100 वर्षों तक निरंतर कथा सुनते रहे, कथा का इंतजाम करते रहे। आने जाने वाले लोगों के खाने पीने रहने की व्यवस्था भी सब करते रहे। इस प्रकार से सेवा में लगे रहे और कथा के विषय को सुनने में सोचने में भी लगे रहे। इस व्यवस्था में लगे रहने के कारण उनको न पास में बहती गंगा में स्नान करने का स्मरण ही आया और न स्नान करने गए ही। 100 वर्ष जब पूरे हो गए थे तब उधर से 2 तीर्थयात्री निकले, धृतव्रत और ज्ञान सिंधु नाम के। प्राचीन काल के अंदर ये तुम्हारे वर्तमान होटलों की व्यवस्था तो थी नहीं, जहां भी जाते थे पता लगाते थे यहां पर कहां आवश्यक है, धर्मशाला इत्यादि कहां है, जहां रह करके अपना समय निकाल के आगे चल देंगे। पूछा तो लोगों ने कहा वहां पर कथा भी चलती है और खाने पीने का इंतजाम भी है, रहने का इंतजाम भी है, वहां चले जाएं। वो लोग वहां आए, पुण्यधामा ने उनकी बड़ी सेवा की, सारी व्यवस्था कर दी। बड़े प्रसन्न होकर के कहने लगे अच्छा भैया यहां से गंगा जी कितनी दूर है, तीर्थयात्री थे ना। पुण्यधामा ने कहा क्या बताऊं, 100 वर्ष से मैं इस व्यवस्था में लगा हुआ हूं, इसलिए गंगा जी जाने की न मुझे याद आई न मैंने किसी से पता लगाया, मुझे पता नहीं गंगा जी कहां है। सुना है यहां से 2 कोस पर है। परंतु खुद गया नहीं हूं इसलिए बतला नहीं सकता हूं, सुना है पास ही है 2 कोस पर है। अब दोनों तीर्थ यात्रियों ने, धृतव्रत और ज्ञान सिंधु ने विचार किया अरे ये लोग तो महानास्तिक लगते हैं, ये तो पापी हैं, गंगा जी के इतने पास रहे और कभी गंगा स्नान करने नहीं गए, इनके यहां तो रहना ठीक नहीं। इसलिए उनका निरादर करके वो वहां से चल दिए और लोगों से पूछा, उन्होंने बताया इधर जाओ, उस रास्ते से गए तो वहां जाकर के देखा गंगा जी में गंगा जल है नहीं नहाने का। धीरे धीरे वो ठेठ गंगा सागर तक चले गए परंतु कहीं उनको गंगा जी मिली नहीं। वापस ऊपर चढ़ते हुए गंगोत्री तक चले गए परंतु कहीं गंगा जी मिली नहीं। अंत तो गत्वा उन्होंने विचार किया जरूर हमसे कोई दोष हुआ है, कलयुग के मध्य में जाकर के तो गंगा जी पृथ्वीलोक को छोड़ देती हैं, लेकिन अभी तो सतयुग ही समाप्त हुआ है, इसलिए गंगा जी ने तो छोड़ा नहीं, हमारी ही कोई भूल है। काशी में जाकर के गंगा जी से प्रार्थना की, गंगा जी ने कहा हमारे जो परम भक्त लोग हैं उनका तुमने अनादर किया, इसलिए मैं लुप्त हो गई, उन्हीं से जाकर के क्षमा मांगो, वो क्षमा करेंगे तभी तुमको गंगा जी की प्राप्ति होगी, मेरी प्राप्ति होगी। अब वो चल करके वापस आए, पुण्यधामा से जाकर के उन्होंने क्षमा मांगी। पुण्यधामा ने कहा मेरे मन में तो कुछ नहीं है, लेकिन हमारे गुरु जो बृहत्तपा हैं उनके पास चलो, वो तुमको गंगा जी के दर्शन का उपाय बताएंगे। वहां जाने पर बृहत्तपा ने कहा, मैंने 101 वर्ष का संकल्प लिया था, जब तक ये समाप्त नहीं होता तब तक जो साल भर बाकी है यहां रहो, उस ज्ञेय तत्व को समझो, उसके बाद अपने सब गंगा स्नान करने चलेंगे। वहां रह करके उन दोनों ने श्रवण किया, फिर उसके बाद वो लोग गए तो निर्मल गंभीर गंगा बह रही थी, उसमें स्नान करके कृतकृत्य हो गए। अब गंगा जी वहीं थी, अत्यंत समीप में, दो कोस की दूरी पर होने पर भी दूरे, गंगा सागर से गंगोत्री तक घूम आए परंतु मिली नहीं। यह केवल एक बृहत्तपा की कथा ही नहीं समझ लेना, कहां पर परमात्मा की कथा होती है तो सत्यव्रत गांव में होती है। जिन लोगों ने सत्य का व्रत लिया है, जो कभी भी सत्य को नहीं छोड़ते, वही इस ज्ञेय तत्व को सुन सकते हैं। चाहे जहां इस ज्ञेय तत्व की कथा नहीं होती, सत्यव्रत गांव में होती है। इसलिए आचार्य शंकर लिखते हैं भाष्य में, प्राणात्ययेपि ये सत्यम न त्यजन्ति तेषामेव एषा ब्रह्म विद्या। प्राण छूटने की परिस्थिति में भी जो झूठ का सहारा नहीं लेता, उन्हीं को इस ब्रह्म विद्या की प्राप्ति होती है। सामान्य दृष्टि से भी समझो, वह परमात्म सत्य रूप है। बहुत से लोग दुकान करते हैं, पास में दूसरी दुकान है, दूसरी दुकान वाला तो करोड़पति बन जाता है, और इनकी भी पास में ही दुकान है, उसी चीज की दुकान है, लेकिन 50 साल के बाद भी जहां है वहां के वहां है। कारण क्या है? जो धन आने पर प्रत्येक धन को मूल्यवान समझता है, सापेक्ष धन के मूल्य को समझता है, सीमित धन के मूल्य को समझता है, वो तो धीरे धीरे धनपति हो जाता है। के पास अधिक धन आ गया, वो बड़ा काम भी कर लेगा। व्यापारी आप लोग बहुत से होंगे, व्यापार का आधार ही है, पहला तुम्हारा कुछ धन संचय हो जाए, कैपिटल बन जाए, तो फिर तो ज्योमेट्रिकल प्रोपोर्शन में बढ़ जाओगे। वो पहला संचय ही कठिन होता, उसने धीरे धीरे धन को मूल्यवान समझा, सापेक्ष धन को, उतने धन से वो कोई व्यापार नहीं कर सकता था, लेकिन उसको एकत्रित करता गया, अंत में बड़ा उद्योग बैठाने लायक हो गया, वो आगे करोड़पति हो गया।
दूसरा ये सोचता रहा अरे ये 10-20 रुपए से होना क्या है, इसलिए जो आया उसको निरर्थक कार्यों में खर्च करता रहा। अब वो धन का आधार कभी बना नहीं, जब आधार ही नहीं बना, कैपिटल ही नहीं बना, तो आगे बड़ा उद्योग होना कहां से। ठीक इसी प्रकार से व्यवहार के अंदर जो सत्य का आचरण है, सत्य का बोलना है, वो परिच्छिन्न सत्य है, सीमित सत्य है, पारमार्थिक सत्य नहीं है। क्योंकि कई बार लोग कहते हैं कि जब आप कहते हैं सारा संसार मिथ्या है, तो जब हम झूठ बोले वो भी तो मिथ्या है। पारमार्थिक दृष्टि से मिथ्या है, परंतु व्यावहारिक दृष्टि से। अब यदि सीमित सत्य को तुम नहीं संभाल सकते हो, व्यावहारिक सत्य को नहीं संभाल सकते हो, तो पारमार्थिक सत्य तुमको प्राप्त हो कैसे सकता है। है ये सीमित, लेकिन इसको इकट्ठा करोगे, पहले सीमित सत्य पर स्थिर रहोगे, तभी न पारमार्थिक सत्य भी प्राप्त हो सकेगा। इसलिए आचार्य शंकर कहते हैं प्राणात्तेपि ये सत्यम न त्यजन्ति, मर जाने पर भी जो झूठ का आश्रय नहीं लेता। इसलिए जो सत्य के ऊपर स्थित रहने वालों का गांव है, सत्यव्रत नामक गांव है, वहीं कथा सुनाई जाती है, अन्यथा ऊपर से निकल जाती है। सुनाने वाला कौन है, तो बृहत तपा। हमारे यहां सबसे बृहत, सबसे बड़ा तप माना गया है यस्य ज्ञानमयं तपः, जिसने परमात्मा का साक्षात अनुभव किया और उसी की निष्ठा वाला है, वही बृहत तपा है, वही बड़ा तप करने वाला है। अब चूंकि उसने परमात्मा का साक्षात्कार किया है, इसलिए वो कथा सुनाएगा तो परमात्मा की ही सुनाएगा। जो मनुष्य जिस चीज को खाता है, उसका पता उसके बोलते ही, उसके मुंह से गंध आने से पता लग जाता है। मूली खा के आएगा तो मूली की गंध, प्याज खा के आएगा तो प्याज की गंध, हींग खा के आएगा तो हींग की गंध, केसर खा के आएगा तो केसर की गंध, गुलकंद खा करके आएगा तो गुलाब की सुगंध, इलायची खा के आएगा तो इलायची की गंध। ठीक इसी प्रकार जिस व्यक्ति ने जिस चीज का खूब चर्वण कर लिया है, खा करके उससे तृप्ति को प्राप्त कर गया है, उसका मुख खुलते ही जो बात निकलेगी वो वही निकलेगी जिसको उसने अच्छी तरह से अपने अंदर स्थिर कर लिया है। रेल में कभी जाओ तो तमाशा देखने को मिलता है, दो कपड़े के व्यापारी मिलेंगे, थोड़ी देर में ही देख लो वहीं उनकी दुकान चालू हो जाती है। सूत के व्यापारी मिलेंगे, सूत का काम शुरू हो जाएगा। कई बार लोग आते हैं, कहते हैं महाराज कुछ सत्संग सुनाइए, कुछ उनको सुना दिया, सुनाने के बाद वो थोड़ी देर में एक दूसरे से बात करने लगते हैं। तो ठीक उन्हीं बातों पर आ जाएंगे जो बातें उनको रात दिन व्यवहार की है। दूसरे से पूछा आप क्या करते हैं, उसने कहा मैं वकील। अच्छा आप वकील है, कहां के वकील हैं? सुप्रीम कोर्ट का। अच्छा अगर ऐसा मुकदमा होवे तो क्या करना चाहिए, राय दीजिए। अथवा आप क्या हैं? तो उन्होंने कहा हम डॉक्टर हैं। किस चीज के डॉक्टर हैं? पेट के डॉक्टर हैं। अरे भाई हमको बड़ी पेट में वायु की तकलीफ रहती है, कोई चीज बताओ। हो गया उनका काम शुरू, क्योंकि अंदर में जो चीज भरी हुई है वही तुरंत निकल जाती है। अब जो बृहत तपा है उसके अंदर तो परमात्मा है, उसके मुख से तो जब बात निकलेगी तो परमात्मा की निकलेगी। इसलिए बृहत तपा परमात्म विषयक कथा महावाक्य ही सुनाएंगे। किसको सुना रहे हैं? तो दीर्घतमा, अनादि काल से जो अज्ञान अंधकार में पड़ा हुआ है, जन्म से ही अंधा है। ऐसा नहीं है कि पहले ये ब्रह्म स्वरूप को जानता था और फिर इसके ऊपर अज्ञान आ गया हो। षडस्माकम् अनादयः, यहां भगवान आगे स्वयं भी कहेंगे विध्यनादि उभावपि, दो तीन श्लोकों के आगे कहेंगे। इसलिए ये जन्मांध है, दीर्घतमा है। मनुष्य की आयु शास्त्रों में बताई है शतायुर्वै पुरुषः, 100 वर्ष की आयु पुरुष की होती है। 100 वर्ष तक कथा सुनाते रहे अर्थात जब तक ज्ञान न हो जाए, जब तक तुम जीवित हो तब तक इस चीज को ही सुनना है। आचार्य शंकर से किसी ने पूछा आप इस अद्वितीय आत्मज्ञान को बतला रहे हैं, यदि हमारी समझ में तो आना कठिन है, समझ में नहीं आएगा तो क्या करेंगे? बोले फिर समझाऊंगा, फिर समझ में नहीं आया तो फिर समझाऊंगा, फिर समझ में नहीं आया तो। अरे भैया जब तक मैं न मर जाऊं या जब तक तुम न मर जाओ तब तक समझाता ही रहूंगा। ये है अपनी सनातन धर्म की परंपरा। अगर दूसरों के पास जाओ तो डंडा दिखलाते हैं। अगर तुमको हमारा मुसलमानी धर्म नहीं जमा तो क्या करोगे? हम तलवार से तुम्हारा सिर काट देंगे। अथवा हमको अगर तुम्हारी ईसाई धर्म की बात नहीं जची तो क्या करोगे? ये जो हम तुमको दवाइयां मुफ्त में दे रहे हैं, शिक्षा मुफ्त में दे रहे हैं, ये बंद कर देंगे। कोई धन की मार बतलाएगा, कोई तलवार की मार बताएगा। सनातन धर्म तो एक बात ही कहता है कि समझाने की चीज समझाने से हुआ कर। मुसलमानों का प्रभाव हमारे ऊपर भी पड़ा, इसलिए आजकल पाठशालाओं के अंदर यदि बच्चे को कुछ समझ में नहीं आता तो उसका कान पकड़ते हैं, थप्पड़ मारते हैं। कान पकड़ने से, थप्पड़ मारने से समझ में कहां से आ जाएगा? ये तो वही स्थिति है। फौज के अंदर भी कुछ शिक्षाएं दी जाती हैं जवानों को, जो सिपाही होते हैं पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो उनको भूगोल पढ़ाया जा रहा था, पृथ्वी गोल होती है। उसने उसको सब नक्शे वक्शे बना के क्यों गोल है सब बताया। भूगोल में सबने आपने पढ़ाई होगा, जहाज का मस्तूल पहले ऊपर दिखता है फिर नीचे दिखता है, ये वो बहुत सी बात है। अध्यापक ने पूछा समझ में आ गए आप लोगों को, कुछ पूछना तो नहीं है, कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो एक ने हाथ ऊंचा किया, बोले जी हमारे तो ये बात समझ में आई नहीं, बचपन से आज तक कभी लुढ़के नहीं, कोई चीज लुढ़की नहीं, गोल है कैसे मान ले, मैं सब चौखे हमको तो सीधी दिख रही है। उसने बेचारे ने फिर वो नक्शे वक्शे खींचे, फिर समझाया। उससे पूछा आप समझ में आया, बोले कुछ नहीं समझ में आया, सामने सीधी जमीन दिख रही है, आप कह रहे हो ये नक्शा देख के समझो। उसने कहा अच्छा नहीं समझ में आया तो कर्नल साहब का ऑर्डर है पृथ्वी गोल है। उसने कहा यस सर, हुकुम है सो हुकुम तो मानना ही है। इसका नाम समझना नहीं है। जब तक चीज बुद्धिगम्य नहीं होगी, जब तक वह तुम्हारा चिंतन का तरीका नहीं बनेगी, तब तक समझाने का काम खत्म नहीं होता। इसलिए बृहत तपा 100 वर्ष तक इसको समझाते रहे, अर्थात यावत जीवन समझाते रहे। पुण्यधामा महर्षि सेवा करते रहे, पुण्यों का जो धाम होवे घर होवे, जहां चित्त शुद्ध होता है वहीं पुण्यों का धाम है। सारे पुण्यों का अंतिम नतीजा क्या होना है तो चित्त शुद्ध हो जाना है। जो चित्त शुद्ध वाला व्यक्ति है वही वस्तुतः वहां कार्य में लगा हुआ है। अब वहां पर घूमते हुए तीर्थयात्री पहुंचते हैं धृतव्रत, जिन्होंने किसी न किसी नियम को पकड़ रखा है। धृत कहते हैं पकड़े हुए, जो कर्म मार्गी होते हैं वो तरह तरह के नियमों को पकड़े रहते हैं। इसलिए धृतव्रत कर्म में लगा हुआ व्यक्ति है, कर्म को ही सब कुछ समझने वाला, और उसके साथ दूसरा है ज्ञान सिंधु, जिसने बहुत शास्त्र पढ़े हैं, बहुत से शास्त्रों को पढ़ने के बाद किसी निश्चय पर अपरोक्ष अनुभव पर नहीं पहुंचा। बहुत से लोग होते हैं जिनको कह सकते हो चलते फिरते विश्वकोश, वॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया, कहीं की भी बात पूछो वो बता देंगे। आगे उनसे पूछो इतना सब पढ़ के तुम कहां पहुंचे, कहते हैं कुछ कहीं नहीं पहुंचे। ठीक जिस प्रकार से कुछ लोग भोजन करते हैं शरीर को पुष्ट करने के लिए, उतना खाते हैं जिससे शरीर पुष्ट हो, क्योंकि खाने का उद्देश्य शरीर पुष्ट करना। बहुत से लोग इसलिए नहीं खाते कि शरीर पुष्ट हो, ज्यादा खाने के लिए खाते हैं। भारतवर्ष में तो इतना नहीं है शायद, टर्की के अंदर जब भोजन कराते हैं तो उसके बाद वो एक प्रकार का तरल पदार्थ लाके देते हैं, उसको पी लो तो तुमको वमन हो जाता है, उल्टी हो जाती है। तो अब कोई चीज अच्छी है हमको खानी है, अब पेट भर गया खाई नहीं जाती, तो वो तुमने प्याला पिया, गए वमन करके निकाल दिया, फिर आकर के फिर खाना शुरू कर दिया। अब इस प्रकार के जो लोग हैं उनको वो खाया हुआ किसी कार्य में तो आता नहीं है। खाने को तो उन्होंने बहुत खा लिया, 200 रसगुल्ले खा लिए, 4-5 बार वमन करके आ गए, लेकिन शरीर को कौन सी पुष्टि मिलेगी। ठीक इसी प्रकार बहुत से लोग बिना पचाए हुए, बिना अपना लाभ किए हुए दुनिया भर की बातों को इकट्ठा करते रहते हैं। इस प्रकार के दोनों तीर्थ यात्री वहां आए। उन्होंने दोनों ने कहा कि अरे गंगा हमको कहां मिलेगी, अर्थात तृप्ति, गंगा स्नान की तृप्ति। गंगा भी गम धातु से बनती है जो निरंतर बहती रहे, और ठीक इसी प्रकार से जो गमनार्थक धातु होते हैं वो ज्ञानार्थक भी होते हैं। इसलिए आचार्य शंकर ने कहा है त्रिभुवन जननी व्यापिनी ज्ञान गंगा। यह जो ज्ञान गंगा है, सारे संसार को उत्पन्न करने वाला जो अधिष्ठान तत्व का ज्ञान है, वही वास्तविक गंगा है। उससे ही तृप्ति होनी है। वो तृप्ति हमको कहां होगी? पुण्यधामा ने कहा कि अरे तृप्ति है तो बहुत पास में, लेकिन अभी हम वहां नहीं पहुंच पाए, अभी हमको अपरोक्ष अनुभव नहीं हुआ है, हम लगे हुए तो हैं। उन लोगों ने सोचा कि अरे ये तो तृप्ति जाने से ही हो जाती होगी, परंतु कहीं उनको तृप्ति हुई नहीं। अंत में जब वापस आकर के उस परमात्म तत्व के विषय में बृहत्तपा से श्रवण करके समझा, तभी तृप्ति हुई। इसलिए भगवान भी यहां कह रहे हैं सूक्ष्मत्वात् तद अविज्ञेय, सूक्ष्म होने से चारों तरफ फैला हुआ है। कबीरदास जी कहते हैं जल बिच मीन पियासी, पानी के अंदर रहने वाली मछली जैसे प्यास से मर रही हो, वे वही हमारी स्थिति है। हमारे अंदर हमारे बाहर चारों तरफ आनंद ही आनंद है, परंतु गैर समझी के कारण हम इस आनंद को, इस तृप्ति के लिए निरंतर छटपटा रहे हैं। अत्यंत समीप होने पर भी अत्यंत दूर हुई हुई है। अब ऐसा वह जो गेय तत्व है, उस गेय तत्व की प्राप्ति जब तक नहीं होती तब तक यह काम होता नहीं। इस गेय तत्व के बारे में और फिर आगे कल बतलाएंगे। ओम भद्रं कर्णे शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्मोऽस्तनूभिर्व्यशे देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।